मुझे अभी हैं ये कह रहे हैं कि दुआओं की कबूलियत का कोई तरीका छा समा।
दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम चीज़ तो ये होती है कि जो दुआ की शरायत हैं, जिसे कबूलियत दुआ की शरायत या असबाब कहा जाता है, उनको जितना ज़्यादा हो सकता है जमा करें। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ यही बयान की गई है कि नंबर एक, गुनाह की दुआ ना मांगे। दूसरा यह है कि हम्द व सलात से शुरू करें और आखिर के अंदर भी दुरूद पाक पढ़े। तीसरा ये है कि दुआ में कसरत करे, तकरार करे, गिड़गिड़ा के मांगे, बार बार मांगे, और जब दुआ मांगे तो दिल गाफिल ना हो, इधर उधर मुतवज्जे ना हो, उसी दुआ पे नज़र हो, अल्लाह ताला की रहमत पे नज़र हो और फौरी तौर पे असर जाहिर ना हो, तो ये ना कहता फिर या ये ना सोचता फिर गया और बड़ी दुआ की कबूली नहीं होती। तो इस तरह के आदाब का जब ख्याल करें, फिर अगर औकात का भी ख्याल करें कि जैसे मिसाल के तौर पे जो तहज्जुद का वक्त है वो दुआओं की कबूलियत का है, जो आधी रात का वक्त है वो दुआओं की कबूलियत का है, फ़र्ज नमाजों के फौरन बाद कबूलियत का वक्त है, और इसी तरह अजान और इकामत के दरमियान का वक्त ये कबूलियत का वक्त है, इसी तरह किसी बरकत वाली जगह जैसे मस्जिद है या किसी वली का मज़ार है वो कबूलियत की सूरत है, अच्छा इसी तरह औलिया किराम का ये नेक आमाल का वसीला पेश करना ये भी कबूलियत का ज़रिया है। तो इस तरह की जितनी चीज़ें जमा हो सकती हैं उनको जमा करें। इसी तरह हदीस मुबारक के अंदर कुछ अस्माए इलाहिया और कुछ दुआएं फरमाई गई हैं, जैसे या हय्यू या क़य्यूम है, या अरहमर राहिमीन है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुल ला इलाहा इल्लल्लाहुर रहमानुर रहीम है, या आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन है। तो इस तरह की जो कबूलियत दुआ की फजीलत पर मुश्तमिल औरादो वज़ाइफ है इनको पढ़ें और इसके साथ दुआ मांगे, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो उसका मतलूबा नतीजा हमें चाहिए होता है अल्लाह ताला वो अता फरमाए।